प्रमा का लक्षण आपको पिछले पाठ में बताया गया था कि प्रमा किसे कहते हैं, तो लक्षण में था यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। इसमें था कि अनुभव शब्द का अनुभव क्यों लक्षण में बोला गया, अनुभव पद का क्यों ग्रहण किया गया, ताकि स्मृति का निराश हो, स्मृति को जो है ना प्रमा न कहा जाए, इसलिए अनुभव बोला गया। इसी तरह से ये प्रश्न था कि यथार्थानुभव प्रमा में यथार्थ छोड़ दीजिए, सीधे कहिए अनुभव प्रमा, यथार्थ कहने की क्या जरूरत है। तो उसका उत्तर था कि संशय विपर्जय तर्क ज्ञानानाम अयथार्थानाम निराशः, माने अयथार्थ ज्ञान जो है संशय ज्ञान विपर्जय ज्ञान और तर्क ज्ञान, इसका निराश होने के लिए लक्षण में यथार्थ शब्द का ग्रहण किया गया। ये इतनी चर्चा हुई थी, और अनुभव किसे कहते हैं वो बताया गया था, और स्मृति किसे कहते हैं वो बताया गया था। जो ज्ञान पहले से रहा हो और आज उसकी याद आ रही हो उसको स्मृति कहते हैं। याद आना माने पहले के ज्ञान का ज्ञान होना, तो पहले के ज्ञान का ज्ञान होना जो है स्मृति है, और नया ज्ञान होना जो है वह अनुभव है। अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। तो दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक स्मृत्यात्मक ज्ञान एक अनुभवात्मक ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान का ज्ञान होना स्मृत्यात्मक ज्ञान है, और जो नया ज्ञान है जिसका पहले से ज्ञान नहीं था वह अनुभवात्मक ज्ञान है। इतनी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इस चर्चा में ये जो बात आई थी ना कि यथार्थानुभव में यथार्थ शब्द क्यों कहा गया, उसके जवाब में था कि अयथार्थ ज्ञान को प्रमा न कहा जाए, इसलिए यथार्थ कहा गया। तो वह अयथार्थ ज्ञान कौन कौन है, तो उसमें तीन ज्ञानों का उल्लेख यहाँ ग्रंथ में किया गया। संशय ज्ञान अयथार्थ ज्ञान है, विपर्जय ज्ञान भी अयथार्थ ज्ञान है, और तर्क ज्ञान भी जो है वह अयथार्थ ज्ञान है। तो पुस्तक में बहुत बाद में जा करके ये बताया जाता है कि संशय ज्ञान किसे कहते हैं, विपर्जय ज्ञान किसे कहते हैं, तर्क ज्ञान किसे कहते हैं, तो वह तो बहुत बाद में आने वाला है। लेकिन अभी चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो इसके बारे में हमें समझ लेना चाहिए। तो कापी कलम जो है ना फिर से आज ज़रूरत है। आज मैं पुस्तक की पंक्ति को शायद नहीं पढ़ा पाऊँगा या बाद में पढ़ाऊँगा, तो कापी कलम पर निकाल लीजिए सामने खोल करके, और जो मैं लिखाता हूँ वो लिखना है आपको। तो पहला लिख लीजिए संशय ज्ञानम। संशय समझ रहे हैं ना, संशय माने संदेह, तो संशय ज्ञानम, संशय ज्ञानम लिख लिया होगा आपने, डैश दे दीजिए, और उसके सामने में लिखना है आपको अयम स्थाणु बा पुरुषो बा, अयम स्थाणु बा, स्थाणु कैसे लिखना है, आधा स था और मूर्धन्य ण टठ डढ़ ण वाला ण छोटा उ और विसर्ग, तो अयम स्थाणु वा पुरुषो वा, पुरुषो वा में वो संधि हो गई है लेकिन पुरुषः वा है, तो पुरुषः के आगे वा है तो पुरुषो वा हो जाएगा संधि हो करके। तो अयम स्थाणु वा पुरुषो वा, ये आपने लिखा संशय ज्ञानम के आगे डैश दे करके, अयम स्थाणु वा पुरुषो वा। अब दूसरा लिखिए नीचे की लाइन में, विपर्जय ज्ञान के लिए लिखिए इयं शुक्ति ही, विपर्जय ज्ञानम, विपर्जय ज्ञानम के आगे डैश लगाइए और डैश के बाद लिखिए इयं शुक्ति ही, विपर्जय ज्ञानम डैश इयं शुक्ति ही। शुक्ति ही कैसे लिखेंगे, तो शुक्ल वाला श तालव्य श में छोटा उ की मात्रा शु, और क्ति ही आधा क त संयुक्त छोटी इकार की मात्रा और विसर्ग, यंग शुक्ति ही। और उसके सामने जो है ना डैश दे करके लिख लीजिए इदंग रजतम, यंग शुक्ति ही के आगे डैश दे करके लिख लीजिए इदम रजतम। तो ये विपर्जय ज्ञानम का मैंने बताया, यम शुक्ति ही इदम रजतम, ठीक है। अब तीसरा जो अयथार्थ ज्ञान है वह है तर्क ज्ञान। तो तर्क ज्ञान के लिए तर्क ज्ञानम लिख लीजिए, फिर सामने में डैश दे करके लिखना होगा आपको, थोड़ा सा ये लंबा है, धूमो यदि धूमो यदि वहनी व्यभिचारी, वहनी वहनी कैसे लिखेंगे, व ह न संयुक्त इकार की मात्रा और व्यभिचारी आधा व य भी में भ में छोटी की मात्रा चारी री में बड़ी की मात्रा। तो धूमो यदि वहनी व्यभिचारी, धूमो यदि वहनी व्यभिचारी, ये वहनी व्यभिचारी को एक में मिला करके ही लिखना। स्यात, स्यात में तो हलंत, धूमो यदि वहनी व्यभिचारी स्यात कामा वहनी जन्यो न स्यात, वहनी जन्यो न स्यात, वहनी अभी लिखा है आपने तो वहनी जन्यो न स्यात। पूरा एक बार फिर से बोलता हूँ, धूमो यदि वहनी व्यभिचारी स्यात वहनी जन्यो न स्यात, धूमो यदि वहनी व्यभिचारी स्यात वहनी जन्यो न स्यात। ठीक है, ये आपने लिखा। अब ये जो तीन तरह का ज्ञान है ना, यही यहाँ पर अयथार्थ ज्ञान के रूप में बताया गया। तो आपको जो है ना यहाँ पर अब मैं समझाता हूँ कि ये आपने लिखा क्या है। इसमें पहला जो आपने लिखा है संशय ज्ञान, तो संशय ज्ञान क्या होता है कि एक ही वस्तु सामने में हो लेकिन उस वस्तु को दो प्रकार से वस्तु का ज्ञान हो रहा हो, और वो जो दोनों प्रकार का ज्ञान है ना वह परस्पर विरोधी हो। वस्तु एक हो और उस वस्तु का दो टाइप से ज्ञान हो, दो प्रकार से अगर ज्ञान हो तो उसको हम संशय कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण में और बेहतर रूप से आप इसको समझ पाएंगे। अब जैसे दूर से जो है ना कोई स्थानु दिख रही है, स्थानु कहते हैं कि ऐसा ये ठूठा पेड़ जो होता है ना, ठूठा पेड़ मतलब जिसमें शाखाएं नहीं होती हैं, पत्ते नहीं होते हैं, केवल जो है ना वो जड़ वाला हिस्सा रहता है और जहाँ से शाखा फूटती है ना उससे पहले का हिस्सा रहता है। माँ की लोग देखते होंगे ना, लोग काट कर के लेकर के चले जाते हैं जलाने वलाने के लिए, केवल वो मोटा सा पार्ट जो होता है ना वही जमीन में जो है धसा रहता है, गड़ा रहता है। तो वह जो ठूठा पेड़ है उसको स्थानु कहते हैं, या फिर इसको समझने के लिए ये भी कह सकते हैं एक मोटा सा खूंटा जो है ना, बहुत ही मोटा खूंटा अगर हो गड़ा हुआ कहीं तो उसको भी स्थानु कह सकते हैं। तो ठूठा जो पेड़ है वह उसको हम संस्कृत में स्थानु कहते हैं। ठीक है ना, तो दूर से अगर आप स्थानु को देखते हैं तो वहाँ पर उस स्थानु को देखने से संदेह हो जाता है। क्या संदेह होता है कि यह स्थानु है आकि कोई पुरुष है। इसी को संस्कृत में यहाँ लिखा आपने, अयम स्थानु वा पुरुषो वा। अब यहाँ गौर करिए, माने ये स्थानु है या पुरुष है, ऐसा आप सोचने लग जाते हैं। तो यहाँ देखिए कि वस्तु तो एक ही है ना वहाँ पर जमीन से गड़ी हुई, लेकिन एक ही वस्तु में दो प्रकार से आपको ज्ञान हो रहा है, एक स्थानुत्व का ज्ञान हो रहा है और एक पुरुषत्व का ज्ञान हो रहा है। तो एक वस्तु में अगर दो प्रकार से ज्ञान हुआ तो एक ही स्थानु में स्थानुत्वेन भी ज्ञान हो रहा है और पुरुषत्वेन भी ज्ञान हो रहा है आपको, इसलिए यह कहलाएगा संशय ज्ञान। तो वस्तु एक हो और उसका दो प्रकार का ज्ञान अगर हो रहा हो तो वह संशय ज्ञान हुआ। ठीक है, अब बताइए, अब जब आपको का क्लियर ही नहीं है कि यह स्थानु है या पुरुष है, आपको संदेह हो रहा है, कभी होता है कि यह स्थानु है कभी होता है कि ये पुरुष है, तो यह यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता ना, यह अयथार्थ ज्ञान ही है, इसीलिए इसको हम यथार्थ ज्ञान के अंतर्गत नहीं रखते हैं। दूसरा जो अयथार्थ ज्ञान का उदाहरण है यहाँ पर, उदाहरण ये अयथार्थ ज्ञान है विपर्यय ज्ञान। विपर्यय ज्ञान को एक शब्द में अगर समझना चाहें तो विपरीत ज्ञान समझ लीजिए, माने जो जैसा नहीं है और वैसा अगर ज्ञान आपको हो रहा है ना तो वह हो गया विपर्यय ज्ञान। इसका उदाहरण आपने लिखा है इयम शुक्ति इदम रजतम, ये सुक्ति जो लिखा है ना, ये सुक्ति शब्द का अर्थ होता है सीपी। सीपी होती है ना, समंदर में सीपी होती है, तालाब वाला में भी सीपी होती है। और उस सीपी के दो टुकड़े जब होते हैं ना, तो अंदर में जो है ना चांदी जैसा ही चमक रहती है, सफेद सफेद कलर की। और मान लीजिए कि कहीं दूर में कोई सीपी रखी हुई है और उस पर सूरज की जो है ना तेज रोशनी पड़ती है, तो क्या होता है ना कि उसमें चमक जो है ना दूर से ही उसकी दिखती रहती है। तो सीपी में जब सूरज की रोशनी पड़ने पर चमक जैसी दिखती है, उसी तरह से कोई चांदी का बर्तन हो, चांदी का कोई टुकड़ा हो, वो भी सफ़ेद है, उस पर भी अगर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो भी वैसे ही चमकेगी। तो आपने अगर दूर से देखा किसी सुक्ति को, किसी सीपी को देखा, तो आपको वहाँ पर क्या होगा ना, विपरीत ज्ञान होगा। क्या विपरीत ज्ञान होगा? रहेगी वह सुक्ति, रहेगी वह सीपी, और आपको ज्ञान हो जाएगा कि यह रजत है। रजत माने चांदी, यह जो है चांदी है। तो इस तरह से सुक्ति में जो चांदी का ज्ञान होता है ना दूर से देखने पर, वो चमकीलापन के कारण, तो वह जो ज्ञान है सुक्ति में रजत का ज्ञान, उसी का नाम है विपर्यय ज्ञान। क्योंकि विपरीत ज्ञान हो रहा है ना, जो जैसा नहीं है वैसा ज्ञान हो रहा है। सुक्ति तो सुक्ति है, रजत नहीं है, मगर सुक्ति में रजत का ज्ञान हो रहा है। तो इयम सुक्ति ही, या जो सुक्ति है, अगर उसमें इदम रजतम का ज्ञान हो जाए तो वह विपर्यय ज्ञान हुआ। यह भी अयथार्थ ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब तीसरा ज्ञान जो है ना, वह है तर्क ज्ञान। एक पहल आप गौर करिए कि तर्क आप कब लगाते हैं। कहते हैं कि तर्क करो, तर्क करना है, तर्क लगाना है। तो तर्क आप तभी लगाते हैं जब तक कि निश्चय ज्ञान नहीं हो। निश्चय ज्ञान हो जाने के बाद ना, ज्ञान का निश्चय हो जाने के बाद तर्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो निश्चय ज्ञान को निश्चय करने के लिए ही तर्क की जरूरत पड़ती है। यह तर्क ज्ञान जो है ना, ये अयथार्थ ज्ञान होता है, क्योंकि निश्चय ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। बाकी जितने ज्ञान हैं वो सब अयथार्थ ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो तर्क ज्ञान को, तर्क ज्ञान निश्चय ज्ञान के निश्चय करने में सहायक होता है। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन है वह अयथार्थ ज्ञान। अब जैसे यहाँ पर आपने लिखा है, धूमो यदि वन्नी व्यभिचारी स्यात् वन्नी जन्यो न स्यात्। यह जो ज्ञान है यह तर्क ज्ञान है। पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। धूम कहते हैं धुआं को, और वन्नी कहते हैं आग को, और व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब है यहाँ पर अलग रहने वाला। तो जो अलग रहने वाला होता है ना, उसको व्यभिचारी कहते हैं, और साथ में रहने वाला जो होता है उसको सहचारी कहते हैं। स्यात माने होगा, बहनी जन्यो न स्यात, बहनी माने आग और जन्य माने उत्पन्न, न स्यात मतलब समझते हैं नहीं होगा। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब अर्थ होगा कि धुआं यदि बहनी का व्यभिचारी होगा तो बहनी से जन्य नहीं होगा। इसको दूसरे शब्द में कहें कि धुआं यदि बहनी से अलग रहेगा तो वन से जन्य नहीं होगा, माने वन से उत्पन्न नहीं होगा। अब ये जो है ना, ये तर्क ज्ञान है। इस तर्क ज्ञान से एक निश्चय ज्ञान होता है। क्या होता है कि चूंकि धुआं जो है वन का व्यभिचारी ज्ञान नहीं है, चूंकि धुआं जो है वन से जन्य है, वन से उत्पन्न है, इसलिए धुआं वन का सहचारी होता है, वन का व्यभिचारी नहीं होता है। तो ये जो निश्चय ज्ञान है, क्या है निश्चय ज्ञान, फिर से बोलता हूँ कि धुआं चूंकि वन से जन्य है, इसलिए धुआं वन का व्यभिचारी नहीं है। यह निश्चय ज्ञान है। इस निश्चय ज्ञान को करने के लिए तर्क ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तर्क ज्ञान क्या है? धूमो यदि बहनी व्यभिचारी स्यात् बहनी जन्यो न स्यात्। माने धूम यदि बहनी का व्यभिचारी होगा, माने बहनी से अलग रहने वाला होगा, तो बहनी से जन्य नहीं होगा, बहनी से उत्पन्न नहीं होगा। तो ये तर्क ज्ञान की जरूरत तब तक पड़ती है जब तक कि ज्ञान निश्चित नहीं हो जाता। इसलिए निश्चित ज्ञान को ही हम यथार्थ ज्ञान का मानते हैं, और यथार्थ ज्ञान के अतिरिक्त जितने भी ज्ञान हैं वो सब अयथार्थ ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ऐसा अयथार्थ ज्ञान जो यथार्थ ज्ञान करने में सहायक हो, वह तर्क ज्ञान की कोटि में आता है। यहाँ पर इस उदाहरण में यही आपको जो है समझना है कि घूमो यदि बन, इसमें क्या होता है, एक और अगर चाहें तो आप लिख लीजिए जल्दी में कि व्याप्यारोपेण व्यापकारोप तर्क, व्याप्यारोपेण व्याप्य के आरोप से व्यापक का जो आरोप होता है वह तर्क कहलाता है। व्याप्यारोपेण व्यापकारोप तर्क, फिर से बोलता हूँ, व्याप्यारोपेण व्यापकारोप तर्क। इसमें दो शब्द आए हैं, व्याप्य और आरोप, व्यापक और आरोप। तो व्याप्य कहते हैं जो कम जगह रहता है और व्यापक कहते हैं जो ज्यादा जगह रहता है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है धूम एक है बहनी। तो बहनी ज्यादा जगह रहती है और धूम जो है कम जगह रहती है, तो धूम को यहाँ पर व्याप्य मानना है और बहनी को व्यापक मानना है। समझ गए, व्याप्य और व्यापक, जो कम स्थान में रहे वह व्याप्य है, जो ज्यादा स्थान में रहे वह व्यापक है। बहनी चूंकि ज्यादा स्थान में रहता है इसलिए वह व्यापक कहलाएगा और धूम जो है कम स्थान में रहता है इसलिए वह व्याप्य कहलाएगा। तो और आपने को ने जो लिखा है कि व्याप्यारोपेण व्यापकारोप तर्क, माने व्याप के आरोप, व्याप्य के आरोप से व्यापक का जो आरोप होता है उसे हम तर्क कहते हैं। यहाँ पर आरोप का अर्थ जो है ना कल्पना कही, तो माने व्याप्य की कल्पना से जहाँ व्यापक की कल्पना हो उसे हम तर्क कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपने उदाहरण में लिखा है ना, धूमो यदि बन्नी व्यभिचारी स्यात् बन्नी जन्यो न स्यात्, इसमें दो पार्ट हैं, एक है धूमो यदि बन्नी व्यभिचारी स्यात्, तो ये जो वाला जो पार्ट है ना इसमें क्या है, व्याप्य का आरोप किया गया, व्याप्य जो धूम है उसकी कल्पना की गई है। और दूसरा जो पार्ट है बन्नी जन्यो न स्यात्, इसमें व्यापक का आरोप किया गया है। तो व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस तर्क, व्याप्य के आरोप से जहाँ व्यापक का आरोप होता है वहाँ पर उसको हम तर्क कहते हैं, तर्क उसके हम तर्क ज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से ये तीनों ज्ञान जो हैं, संशय ज्ञान, विपर्जय ज्ञान और तर्क ज्ञान, ये अयथार्थ ज्ञान है और अयथार्थ ज्ञान प्रमा न कहलाए, ये अप्रमा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो अयथार्थ ज्ञान है ये प्रमा न कहलाए, इसीलिए प्रमा के लक्षण में यथार्थानुभव प्रमा ऐसा बताया गया। ठीक है, तो इस आज का पाठ जो है ना यहीं संपन्न होता है, आगे के पाठ में आगे का देखेंगे।